हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अच्छा, तो तुम उस खड़ूस रणविजय के साथ कब से काम कर रही हो? ये सुनकर अनामिका मुस्कुराकर बोली, तुम्हें क्या हुआ है? झलक की दिल में तो आया कि वो पूरी बात, किस तरह रणविजय ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, सब कुछ अनामिका को बता दे। लेकिन वो इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस इतना कहा, तुमने देखा नहीं है वो किस तरह से डॉन की तरह रहता है, इसलिए मैंने उसे खड़ूस बोला। तब अनामिका बोली, अच्छा, क्या तुम्हें रणविजय पसंद है? जैसे ही अनामिका ने ये बात जानने की कोशिश की, झलक का खून खौल उठा और वो गुस्से में बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों पसंद करूंगी मैं उसे? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोगों से तो मुझे नफरत है। ये कहते कहते झलक का चेहरा पूरी तरह गुस्से से तमतमा रहा था। तभी अनामिका बोली, अरे सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें इस तरह से हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। झलक ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए सोचा कि उसे इस तरह गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो गुस्से में बात करेगी तो अनामिका उसे रणविजय के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएगी और उसे इस वक्त रणविजय के बारे में सारी जानकारी निकालनी ही होगी। इसीलिए उसने थोड़ा प्यार से बोलते हुए कहा, अच्छा अनामिका, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो असल में कौन है और कहाँ रहता है? मैंने दादी से जितनी बार भी पूछने की कोशिश की, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम तो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो ना, प्लीज़ मुझे उसके बारे में कुछ बता दो। ये सुनकर अनामिका थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि रणविजय ने उसे इस तरह की कोई इजाज़त नहीं दी थी कि वो उसकी कोई भी बात झलक के सामने शेयर करे। इसीलिए वो इधर उधर देखते हुए बोली, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। वैसे झलक, तुम्हें याद है जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब मैंने तुम्हें एक लॉकेट दिया था? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं वो लॉकेट एक बार देख सकती हूँ? ये सुनकर झलक चौंकते हुए बोली, लेकिन वो तो तुम मुझे गिफ्ट दे चुकी थी ना, और वो तो एक मामूली सा लॉकेट था, भला तुम उसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो? क्योंकि झलक के लिए कोई भी चीज़ मिलना मतलब उसे जल्दी से फेंक देना नहीं होता था, वो हमेशा चीज़ों को संभाल कर रखती थी। झलक को अभी तक यही लगता था कि वो एक मामूली सा चांदी का लॉकेट है, लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि वो इतनी महंगी धातु से बना हुआ है कि उस लॉकेट की अकेले की कीमत ही करोड़ों में थी। लेकिन फिलहाल अनामिका ने झलक की इस गलत फहमी को दूर नहीं किया, वो बस बोली, मैं जानती हूँ कि वो लॉकेट तुम्हारे पास सुरक्षित है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे वो किसी खास ने दिया था, बस मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। ये सुनकर झलक चौंकते हुए बोली, लेकिन वो तो तुम मुझे गिफ्ट दे चुकी थी ना, और वो तो एक मामूली सा लॉकेट था, भला तुम उसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो? क्योंकि झलक के लिए कोई भी चीज़ मिलना मतलब उसे जल्दी से फेंक देना नहीं होता था, वो हमेशा चीज़ों को संभाल कर रखती थी। झलक को अभी तक यही लगता था कि वो एक मामूली सा चांदी का लॉकेट है, लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि वो इतनी महंगी धातु से बना हुआ है कि उस लॉकेट की अकेले की कीमत ही करोड़ों में थी। लेकिन फिलहाल अनामिका ने झलक की इस गलत फहमी को दूर नहीं किया, वो बस बोली, मैं जानती हूँ कि वो लॉकेट तुम्हारे पास सुरक्षित है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे वो किसी खास ने दिया था, बस मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। ये सुनकर झलक ने ज़्यादा नहीं सोचा और देर ना करते हुए उसने फटाफट अपना बैग खोला और वो लॉकेट अनामिका को दे दिया। अनामिका ने जैसे ही लॉकेट अपने हाथ में लिया, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया, जिसे झलक ने नोटिस कर लिया था। झलक उससे सवाल करना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि शायद ये लॉकेट वाकई में अनामिका को उसके किसी खास ने दिया होगा, इसीलिए वो इसे देखकर इमोशनल हो रही है। इसीलिए झलक बोली, देखो, अगर तुम ये लॉकेट वापस लेना चाहो तो तुम ले सकती हो, मुझे किसी के जज्बातों से खेलना नहीं आता। जैसे ही झलक ने ये कहा, अनामिका की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ झलक अनामिका के इमोशंस की कद्र कर रही थी, जबकि अनामिका तो सीधा सीधा झलक का दिल तोड़ने आई थी। वो उसके इमोशन से खेलना चाहती थी और उसे रणविजय की तरफ आकर्षित कर सिद्धार्थ की जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहती थी। लेकिन यहाँ झलक उसके जज्बातों की इज्जत कर रही थी, जो अनामिका को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा, नहीं, ये गिफ्ट मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जब मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे चुकी हूँ तो मैं इसे तुमसे वापस कभी नहीं लूँगी, कभी भी नहीं। फिलहाल झलक ने भी इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, वैसे भी वो दूसरों के इमोशंस के बीच ज़्यादा दखल नहीं देती थी। उसने लॉकेट वापस लिया और अपने बैग में रख दिया, फिर हल्की सी जम्हाई लेते हुए बोली, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। झलक अब ये समझ चुकी थी कि अनामिका जानबूझकर रणविजय के बारे में बात करने से बच रही है, वरना जब झलक ने उससे सवाल किया था तो वो जवाब दे सकती थी, लेकिन अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए झलक को समझ आ गया था कि अनामिका के साथ टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, वैसे भी आज जो मारपीट उसके साथ हुई थी उससे उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अनामिका झलक की बात समझ गई थी, वो बोली, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तब तक अपना बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ। ये कहकर वो झलक के कमरे से चली गई। वहीं झलक दरवाजा बंद करके बेड पर लेट गई। आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी मूवी रील की तरह घूमने लगा। वो सोचने लगी कि क्या वाकई सिद्धार्थ ने उसके साथ ये सब किया था, क्योंकि जिस तरह पहाड़ी इलाके में सिद्धार्थ ने भेड़ियों से उसकी जान बचाई थी, जिस तरह जब आग लगी थी तब उसने उसे सुरक्षित बाहर निकाला था, इतना ही नहीं जब जब उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ी थी सिद्धार्थ हर बार उसके साथ मौजूद रहा था। लेकिन अब उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था, खासतौर पर झलक को लेकर। उसे लगता था कि झलक ने यह सारा नाटक सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ से शादी करने के लिए किया था, क्योंकि वो खुराना परिवार की बहू बनकर नहीं बल्कि खुराना परिवार की मालकिन बनकर वहां पहुंचना चाहती थी और सब पर राज करना चाहती थी। खुराना परिवार कितना बड़ा और प्रभावशाली परिवार है ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। शायद इसी वजह से उसने सिद्धार्थ की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने का फैसला किया और इस तरह की वीडियो वहां चलवाई थी। लेकिन फिलहाल वो गहरी सांस लेकर सोने की कोशिश करने लगी थी। फिर भी उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि क्या वाकई सिद्धार्थ खुराना ऐसा कुछ कर सकता है। जिस सिद्धार्थ को उसने जितना जाना और समझा था उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी छोटी और घटिया हरकत भी कर सकता है। लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी कि इंसान बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल झलक इस वक्त किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, वो बस आराम करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई था। अपने भाई का इतने दिनों बाद फोन देखकर झलक काफी खुश हो गई। उसने तुरंत फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से हल्की सी रोने की आवाज आई और उसका भाई बोला, दीदी मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। दीदी आप प्लीज वापस आ जाइए ना, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने भाई की रोती हुई आवाज सुनकर झलक का गला भर आया। वो बोली, अरे तुम मेरे चैंप हो, तुम इस तरह से कैसे रो सकते हो? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरे चैंपियन हो, तुम इस तरह से रोने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रोना तो सिर्फ लड़कियों को सूट करता है, लड़कों को नहीं। तुम कब पड़े होगे और इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? ये सुनकर उसका भाई और जोर से रोने लगा। अपने भाई को इस तरह टूटा हुआ महसूस करके झलक चौंकते हुए बोली, क्या बात है भाई, बोलो ना, जवाब दो। तभी उसका भाई बोला,
दीदी मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूँ लेकिन दिन रात मम्मी पापा काम करते हैं, घर का खर्चा भी पूरा नहीं चल पा रहा है। इतना ही नहीं, पापा की दवाइयां तक टाइम से नहीं आ पा रही हैं। मैं कब बड़ा हो जाऊंगा दीदी? बड़ा होकर मैं सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। दीदी मैं सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। ये सुनते ही झलक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसके परिवार की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। इसी वजह से मामिता भी सीधे तौर पर उसे सारी बातें नहीं बताई थीं। वो नहीं चाहती थीं कि झलक उनकी वजह से परेशान हो।